यशाया अध्याय 60, यशाया अध्याय 60 पद 1 से लेकर 6 तक। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थर थराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुण अनुवाद आनंद से सुनाएंगे। वे आज सोना ले लेकर आ रहे हैं। यशाया अध्याय 60 पद 6 से लेकर 13 तक। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेड़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभयमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल की नाई और दर्बों की ओर उड़ते हुए कबूतरों की नाई आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इसराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभयमान किया है। परदेशी लोग तेरी शहर पना को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद ना किए जाएंगे, जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। हां, ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यनाश हो जाएंगी। लेबनोन का विभाव अर्थात सनोवर और देवदार और सीधे सनोवर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। ये भविष्यवाणी मसीहा के महिमाशाली आगमन की तथा मसीहा के आने पर इसराइल को प्राप्त होने वाली महिमा के साथ आप ये भी देखेंगे कि इसराइलियों को प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कई बार सोचते थे कि यीशु जब रोमी सरकार का तख्ता पलटेगा, इस कारण जब यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु की चर्चा की, तब तब वे असमंजस में पड़ गए थे। जब पत्रस ने यीशु के समक्ष ये अंगीकार किया, मत्ती अध्याय 16 पद 16 से 18, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तदोपरांत यीशु ने उन्हें समझाना आरंभ किया कि किस प्रकार मनुष्य के पुत्र घात किया जाएगा तथा तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। मत्ती अध्याय 16 पद 22 और 23। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जब यीशु अपने परित्याग और मृत्यु की चर्चा कर रहा था, तब ये पत्रस से सहन न हुआ, प्रभु ऐसा मत कह, परमेश्वर ऐसा ना करे। यहूदियों के सामने बड़ी समस्या थी। यशया पुस्तक अध्याय 53 में लिखा है, उससे घृणा की जाएगी, उसका त्याग किया जाएगा, वो एक दुखी मनुष्य होगा, उसकी पहचान रोग से होगी, वो अपराधों को उठा ले जाएगा, हमारी शांति के लिए उसे मार पड़ेगी और उसके कोड़े खाने से हमारे घाव भरेंगे, क्योंकि हम सब भेड़ों की नाई भटक चुके थे, हमने तो अपने मुंह उससे फेर लिए, परंतु उसने निश्चय ही हमारे अपराधों को उठा लिया, हम सब तो अपने अपने मार्गों पर भटक रहे थे, परमेश्वर ने हमारे अपराधों की सजा उसको दे दी। उसे पीटा गया और बहुत कुछ सहना पड़ा। ये तो थी मसीह के दुखों की भविष्यवाणी। अब आगे हम उस महिमा के बारे में पढ़ते हैं जो मुक्तिदाता के फिर से आने पर इसराइल को प्राप्त होगी। यहां हम समझ पाते हैं कि ऐसी परस्पर विरोधी भविष्यवाणियों के कारण मसीह के बारे में यहूदियों का विमूढ़ हो जाना स्वाभाविक ही था। अतः इन परस्पर विरोधी परिस्थितियों को समझने के लिए उन्होंने दुखों को आत्मिक रूप प्रदान कर दिया था तथा उन्होंने केवल मसीह के महिमा के राज्य को ही अपनी आंखों में बसाए रखा और इसी पर बल देते रहे। अन्य सब बातों को उन्होंने आत्मिक परिप्रेक्ष्य में बसा दिया। दुख, त्याग, मृत्यु आदि सब उनके लिए आत्मिक परिप्रेक्ष्य था। इस कारण जब उनके मसीहा का आगमन हुआ, तब वे उसे पहचानने में असफल रहे, जबकि वो धर्मशास्त्र को निश्चय ही पूरा कर रहा था। यशाया अध्याय 61 में हम यीशु के दोनों आगमन में स्पष्ट अंतर देखेंगे और एक ही पद में देखेंगे। वहां आप देखेंगे कि विचार एकदम टूटता है और वो यीशु के दूसरे आगमन की चर्चा करता है जो उसके पहले आगमन से भिन्न है। जब यीशु को कफरनूम में धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए दिया गया था, तब उसने भविष्यत वक्ताओं से जो भाग पढ़ा वो यशाया अध्याय 61 है। उसने उस अध्याय का केवल प्रथम भाग ही पढ़ा था और पुस्तक लौटाकर बैठ गया। उसने सबको देखते हुए कहा कि भविष्यवाणी का ये भाग सबके सामने पूरा हो चुका है। ये एक बड़ा ही गंभीर वक्तव्य है। यहां ध्यान देने योग्य बात जो है वो है, उसने वहां आकर पढ़ना रोका, ठीक वहां जहां उसके प्रथम आगमन की भविष्यवाणी समाप्त होती है। उसने अपने फिर से आने की भविष्यवाणी को नहीं पढ़ा कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ये दिन आने वाला है, अतः उसने वही पढ़ना रोक दिया था। यहां अध्याय 60 में हम मसीह के वैभवशाली राज्य के बारे में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि उसे अन्य जातियों द्वारा कैसी प्रतिष्ठा प्रदान की जाएगी। अन्य जातियां उसके समक्ष एक होंगी, संपूर्ण विश्व से मनुष्य उसे उपहार लाकर देंगे और इस्राएल राष्ट्र महिमावंत किया जाएगा। शिष्यों को भी यही आशा थी। यीशु ने मृतकों में से जी उठने के पश्चात अपने शिष्यों से कहा था, पिता की दी हुई प्रतिज्ञा को पाने तक यरूशलेम में ही रुके रहना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। शिष्यों ने तब भी उसे पूछा, प्रभु क्या यही वो समय होगा जब तू राज्य की महिमा को लेकर आएगा? ओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, समय और ऋतुएं पिता की ओर से निर्धारित है। इस समय हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और विषय की बात कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तथापि शिष्य उस महिमा की आशा में थे। वे विवाद कर रहे थे कि जब प्रभु अपने राज्य की स्थापना करेगा, तब मैं तुझसे बड़े पद पर बैठाया जाऊंगा। इस प्रकार वे विवाद कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन होगा। प्रभु ने उसे पूछा कि वे क्या बातें कर रहे थे। ओ, ऐसे ही। तब उसने उनसे कहा, जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। उसने ये शिक्षा दी कि बड़े होने का मार्ग है एक सेवक की मनोवृत्ति और आचरण, अपने आप को प्रभु की दृष्टि में ऐसा दीन बना देना कि प्रभु हमें ऊपर उठाए। अतः शिष्यों के प्रश्न पूछने का कारण भी अध्याय 60 ही था, क्योंकि वो उनकी महिमा के विषय चर्चा करता है। वे बड़े ही देशभक्त लोग थे, अतः वे निश्चय ही इसराइल राष्ट्र की महिमा के अभिलाषी थे। वे एक ही आशा लगाए थे कि वो महिमा को लेकर आ जाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस की मृत्यु स्वीकार कर ली, तब वे असमंजस में पड़ गए। यही कारण था कि सब उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। उनके विचारों में राज्य की स्थापना उसी समय होनी थी। वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि परमेश्वर ने दोनों आगमन के मध्य का समय अन्य जातियों को विश्वासियों की मंडली में एकत्र करने के लिए नियुक्त किया है, जिसे मसीह की देह या मसीह की दुल्हन का नाम दिया गया है। अतः वो इस गौरवशाली एकत्रीकरण की चर्चा कर रहा है कि द्वार खोले जाएंगे, अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाए, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। यशाया अध्याय 60 पद 14। तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इसराइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। उस दिन यरूशलेम की महिमा ऐसी होगी। यशाया अध्याय 60 पद 15 से लेकर 17 तक। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई तुझमें से होकर नहीं जाता था, इसकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तू अन्य जातियों का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूं। मैं पीतल की संति सोना, लोहे की संति चांदी, लकड़ी की संति पीतल और पत्थर की संति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। धर्मी महसूल लेने वाले होंगे तो कैसा आनंद का समय होगा। यशाया अध्याय 60 पद 18, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात वो अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। वो कैसा महिमा का समय दिन और स्थान होगा जब नगर या उसकी शहरपना उद्धार कहलाएंगे और फाटक स्तुति लाएंगे। अतः उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो और उसके सिवानों में स्तुति के साथ, जहां लोग उत्सव मनाते हुए आराधना करेंगे। ओ कैसी महिमा! यशाया अध्याय 60 पद 19 से लेकर 22 तक। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे और तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधों और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि वो अपने उद्देश्यों को अपने ही समय में पूरा करेगा, अर्थात वो महिमामय पुनरुद्धार और इस नगर और इस राष्ट्र में अपना काम जो वो करेगा। ओह, मसीह के फिर से आने का दिन कैसा महान होगा! ये आशा लिए तो आज हरेक यहूदी का दिल धड़कता है। इसी आशा में तो एक मसीही विश्वासी का जीवन है कि परमेश्वर की धार्मिकता पृथ्वी को उस प्रकार भर दे जिस प्रकार जल समुद्र को भरे हुए हैं। प्रभु का महिमा का दिन। आज के संसार को देखते हुए हम परमेश्वर के हस्तक्षेप के अधिकाधिक आवश्यकता को देख रहे हैं। पृथ्वी पर व्याप्त अन्याय को देखते हैं। यदि कोई सच्चाई के लिए खड़ा हो तो वो अकेला छोड़ दिया जाता है, उसको त्यागा ही नहीं दिया जाता, उसको ठट्टों में उड़ाया जाता है। अतः समय आ गया है कि परमेश्वर का आत्मा बैरी के विरुद्ध खड़ा हो जाए, कि मुक्तिदाता फिर से आकर धार्मिकता की इस पृथ्वी पर और अपने राज्य की महिमा में स्थापना करे। परमेश्वर न्याय और धार्मिकता की खोज कर रहा है। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों की खोज में है जो उसका आदर करें, होठों से नहीं परंतु मन से और कामों से। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों की खोज में जो उसकी सेवा शुद्ध मन से करें। परमेश्वर ऐसे लोगों की और उनकी पुकार को सुनता है, परंतु दुष्ट के लिए ना विश्राम ना शांति। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसे प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें, कि हमें परमेश्वर की उस शांति का अनुभव हो कि जब हम मसीह के फिर से आने की प्रतीक्षा करते हैं तब हमारे मन उसकी शांति में और उसके प्रेम में अवस्थित हो, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उस राज्य के युग में पूरी हो। जब हम अपने साथियों के प्रति अनुकंपा, समझ, सहन शक्ति और दया का प्रदर्शन करते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष दे तथा आपको अपने प्रेम और अनुग्रह की बहुतायत प्रदान करे। जब हम पतितों का उत्थान करें तब परमेश्वर हमें उसके सेवक तथा प्रतिनिधि होने में सहायता करें। जब हम दमन किए हुए लोगों के निकट जाएं और उनके साथ हमें दी गई परमेश्वर की आशीषों को बांटें, तो परमेश्वर हमें इस आवश्यकताग्रस्त संसार में अपनी धार्मिकता का साधन बनाए। परमेश्वर को अचंभा हुआ कि विनती करने वाला कोई भी ना था, खड़े होने के लिए एक भी ना था। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन दिनों में हम विनती करने वाले हो। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अपनी महिमा के निमित्त प्रयोग करे, यीशु के नाम में।